நமோ சித்தாரம் நமோ ஆயரியாரம் நமோ உபசாயாரம் நமோ லோய் சப்சாஹூரம் மங்களம் பகவான் தீரோ மங்களம் கௌதமோகன் மங்களம் குண்டு குந்தாத்யோ ஜெயந்த தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாணகாரகம் சதானாம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயம் ஜெயதும் சாஸ்திரம் ஜெயம் ஜெயதும் சாஸ்திரம் ஜெயம் ஜெயதும் சாஸ்திரம் தீன புவனமே சார் வீத ராக வித்யானதா சிவ ஸ்வரூப சிவகார் நம உத்ரயோக சமாயிக்கு छैताला की तीसरी ढाल उस पर निश्चय सम्यक के स्वरूप के पास व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप चल रहा है और उस पर हमने देव गुरु और धर्म के लक्षण को अभी तक पढ़ा है। देव जो होते हैं वो जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो, जो जिनेन्द्र हो, जितेंद्रिय हो। गुरु वो जो परिग्रह के बिना हो, बाह्याभ्यंतर। और धर्म वो जो दया, जिसका दया मूल हो, जिसका अहिंसा प्राण हो। बराबर। इस पर से किसी को कोई भी क्वेश्चन?
अनुभव जी, मुझे यूजुअल एक है।
हाँ, हाँ,
अभी अभी बहुत जन भी नहीं है तो मैं पूछी थी। आज हमारे यहाँ जाना की शिविर होने वाली है तो हम मंदिर में मेन्यू वगैरह जो उन्होंने भेजा है बना रहे थे। तो मुझे आज पूछा गया कि क्योंकि मेन्यू में जो ऑर्गेनाइजर है छाना के, हम तो यहाँ होस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने लिखा था कि जलेबी होनी चाहिए ब्रेकफास्ट में। तो मुझे आज जो हमारे यहाँ जो मंदिर के हैं ज्ञान भाई, उन्होंने पूछा वो के उन्होंने पूछा कि आप जलेबी होनी चाहिए। तो मैंने बोला आप मुझे पूछोगे तो मैं तो बोलूंगी कि नहीं होनी चाहिए जलेबी, हम मुमुक्षु को जलेबी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव पुरुषार्थ सिद्धि में बोलते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, कि जलेबी में तो जीव जल 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 कर मरते हैं। तो मैंने बोला कि हमें नहीं चाहिए। इन्होंने पता नहीं क्यों जलेबी लिखी है, वैसे इतना स्वाध्याय करते और जलेबी लिखी, जलेबी का ब्रेकफास्ट उनको देना है तो मुझे तो ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपको पूछती हूँ कि मुमुक्षु रियली जलेबी खाते हैं?
ओके, जलेबी एज इन वो जो राउंड 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 सर्कल में होती है, राइट? येलो, येलो कलर की होती है,
येलो। हाँ,
करेक्ट। ओके ओके, एक्चुअली उसको शायद फर्मेंट किया जाता है,
फर्मेंट
जो खटास।
हाँ
हाँ हाँ, वो अपन लोग नहीं खाते हैं, वो वाली नहीं खाते हैं यहाँ पर। और दूसरी भी बनती है, वो खोबे वाली बनती है, उसका फर्मेंटेशन नहीं रहता है, वो डिफरेंट बनती है। बट जो वहाँ पर वो येलो वाली चलती है, दैट इज वो फर्मेंटेड होती है, उसको तो नहीं खाना।
वो फर्मेंटेड है, वो ही, उसको ही जलेबी, दूसरी नॉन फर्मेंटेड मुझको नहीं पता है।
और प्लस जो फिर आप लोग बेसन वगैरह यूज करेंगे वो कैसा रहेगा?
नहीं, ये जलेबी में तो मुझे लगता है मैदा का आटा होता है और उसमें दही डालते है और फिर वो
फर्मेंटेड।
अनुभव जी, एक्चुअली भानुबेन, एक्चुअली क्या है, जलेबी एक्चुअली है ना, वो अलग रीच से बनाते हैं ना, तो उसमें वो मतलब इन्हों फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। तो तेजल आके घर पे बनाती है तो वो गेहूं के लोट का ही बनाती है और उसमें दही वगैरह नहीं डालती है और इंस्टेंट वो बन जाती है। पर आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ आई थिंक बाहर तो मतलब यू नो ऑब्वियसली सभी जगह फर्मेंटेड ही होके दही सब मिला के बनाते हैं, तो हम वो नहीं खाते, पर घर पे ऐसे यू नो ये रीच बना सकते हैं।
घर पर बन सकती है, घर पर प्रॉब्लम नहीं है। घर पर एक खोबे वाली भी बनती है, दो तीन टाइप की जलेबियां बनती हैं। तो घर पर तो इट्स अ स्वीट, तो उसको तो विदाउट फर्मेंटेशन, वो मैंने इसलिए पूछा, अलग अलग मटेरियल, बेसन वाली भी बनती है, मैदा वाली भी, बट फर्मेंटेड जो भी रहेगी चीज वो भी डू नॉट ईट, जब फर्मेंटेड नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चालू चालू जो हम यूजुअली जलेबी समझते वो तो वो फर्मेंटेड ही
वो
होती है ना।
फर्मेंटेड होती है तो बाजार में आती है, दैट इज ऑल फर्मेंटेड।
हाँ, तो ये तो उन्होंने, क्योंकि ये सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ये जलेबी कौन बनाएगा मंदिर में, तो वो लोग सोच रहे थे कि केटर कर ले जलेबी, तो मैंने तो फिर ना बोला उन्हों को, और फिर ज्ञान भाई ने भी एग्री किया, बोलते कि हाँ हम ये कैंसिल कर देंगे और कुछ पोहा कैसा बना लेंगे।
ठीक है, क्योंकि सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, तो घर में तो बनाते हैं जलेबी वगैरह, यदि कभी किसी के यहाँ
हाँ,
बर्थडे
मगर
वगैरह
सो
तो
सो 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 जने की जलेबी सुबह बनाना
फिर बाहर, तो
इतना।
वही तो उसमें फिर वो तो बड़ा हिस्सा भी होगा, तो प्रॉब्लम रहेगी फिर तो।
नहीं, वो तो ऐसा ही, ये क्योंकि हम जीव हिंसा की भी बात करते थे।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो तो है ही, वो जितना सामने ही दिखता है फर्मेंटेशन, यदि वो बाहर वाला यूज करेगा तो उसको तो शायद दूसरी मेथड पता भी ना हो। सो ठीक है, तो ये धर्म दया वाला होना चाहिए, अहिंसा वाला होना चाहिए, जिसमें हमें एक्चुअल में पता हो कि जीवों की योनियां कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ पर जीवों के जन्म हो सकते हैं, राइट? एंड इट गोज टू द डीपेस्ट लेवल कि जब हम अपने घर की क्रॉकरीज भी यूज करने का सोचते हैं, हम जब घर के छोटे छोटे बर्तन भी खरीदते हैं, लाइक प्लेट्स खरीदते हैं, ग्लासेस खरीदते हैं, तो इवन इट गोज टू दैट लेवल, जब कोई विचार करने के लिए उतरता है तो अमुमुक्षु शुड बी सो कॉशियस अबाउट इट, कि कई बार कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनके आसपास जगह रहती है, उनमें थोड़ा ज्यादा कर्व होता है तो सफाई अच्छे से नहीं हो पाती, राइट? सेम, मतलब ये सारे थॉट्स एक मुमुक्षु के जाते हैं। लाइक इट वाज वेरी नाइस, वन इंसिडेंट हैपेंड व्हेन देयर वाज अ पंच कल्याणक, एक पंच कल्याणक था रिसेंटली, ये बसंत भाई बताते हैं शायद, कहाँ का पंच कल्याणक था, या तो चैतन्य धाम का ही था या कहीं का, तो वहां के पंच कल्याणक के लिए जब खाने की थाली वगैरह आ रहे थे जो केटरिंग से, तो उसको देखने गए थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कौन थे, बट आई नो द इंसिडेंट वेगली। सो जब थालियों को देखा तो थालियां बहुत कर्वी थी, तो फिर वो थालियां रिजेक्ट करती गई, क्योंकि उन थालियों में यदि धुलाई भी होती है तो हिंसा बहुत होती है, वो चीजें रुक जाती हैं, कुछ खाना रुक जाता है। तो उस हिसाब से भी हम लोगों को इतना कॉन्शियस, इतना सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि घर पर कई कई जगह, जैसे कई कई जगह घर पर होती है जहां पर कई बार हमारा, जैसे मैं गार्डनिंग करी, गार्डन में पानी डाला तो बाहर जो उसके ऊपर एक फ्लोर था वहां पर थोड़ा सा पानी रुक गया, ठीक है, तो वो आपको लगा थोड़ी सी देर के लिए रुका और वो सूख जाएगा सन में, बट इफ इट रिमेन्स फॉर मोर देन 48 आवर, यदि आपने छान के पानी डाला है, देन आफ्टर 48 आवर्स उसमें जीव उत्पन्न होने लगेंगे, यदि छान के डाला है तो, अनछना डाला है तो ऑलरेडी उसमें त्रस जीव है, राइट? तो फिर आपने भी उसको ऐसे ही एक जगह रख दिया और वो सूख रहा है सूरज की गर्मी में, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। हम ऐसे ये हमने एक तरीके से वहां पर नाली बना दी, भले ही वो छोटी हो और उसमें शायद ऐसी भयंकर नाली नहीं होगी, बट फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स द वॉटर स्टेड देयर, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी, और फिर कोई यदि उस पर पैर रख दे तो जीवों की हिंसा होगी, तो
तो
कहीं
मुझे
पानी रुक
यह
जाता
क्वेश्चन है कि जो बर्तन हम धोते हैं
है।
तो वो ड्राई होने में तो वैसे थोड़ी देर लगती है,
नहीं,
तो
वो जो धोना है, सी आप हमेशा छने पानी को हम यूज में लेते हैं, राइट? और हम पानी पूरा यूज में लेके खत्म कर, मतलब उसमें कर देते हैं, तो पानी धीरे धीरे जाके हो जाता है ड्राई ऑफ, वो ठीक है। यहाँ पर बात है जो कि वो दैट इज नेसेसरी थिंग फॉर अस टू डू, वो आरंभी हिंसा में आएगा, जो बर्तन का धोना है, उसका जो पानी स्पिल होना है, जो उसके सूखने में टाइम लगना है, वो आरंभी हिंसा है। लेकिन उसके धोते साथ साथ हमने ध्यान नहीं दिया और शायद नीचे फ्लोर पर भी पीछे साइड कहीं कहीं पर भी पानी वहां पहुंचकर वो वहीं रुका हुआ पानी है एंड हमने ध्यान नहीं दे पाया तो अब वो अनर्थ दंड हो गया। नाउ दैट वाज नॉट नेसेसरी, हम उसको साफ कर सकते थे लेकिन चूंकि हमने उसको जाने दिया ठीक है थोड़ा पानी पड़ा है क्या हुआ, बट कोई दूसरा आएगा उसका उसमें पैर लगेगा तो उस पानी में जो जीव है वो मर जाएंगे या फिर वो पानी खुद सूखेगा धीरे धीरे उसे तो वो चीज मर जाएंगे। सो बेटर इट इज,
परंतु अगर अगर क्योंकि हाउएवर केयरफुल यू आर तो भी थोड़ा सा कभी
कॉशियस यानी कि इतना थॉटफुल, हमारे थॉट्स इतने कोमल हो जाने चाहिए, हमारी परिणति इतनी कोमल होनी चाहिए कि हमको खुद दिख जाए तो हम फिर वहां पर उसको सही करने के लिए वह रेडी हो जाए। तो हो
अगर,
गया
अगर पहुंच ले हम नीचे, सपोजिंग पानी नीचे पड़ा अगर वो पहुंच ले तो भी वो कपड़ा तो भीना ही है गिला ही है तो
लेकिन हमने करेक्ट वो जो कुछ भी आएगा वो आरंभी हिंसा में आएगा। वो
अच्छा।
हिंसा वो भी जब आप उनकी हिंसा में रखकर, मतलब आप उनकी और हिंसा नहीं हो इसको ख्याल में रखकर आप वहां पर प्रयत्न करते हो, वहां अपना इंटेंशन उनकी रक्षा करना है ना कि उनकी हिंसा करना। हो रही वहां भी शायद हिंसा होगी थोड़ी बहुत जो भी होगी, बट वहां पर इंटेंशन क्या है कि उनकी रक्षा हो जाए। यहाँ पर जब वो ऐसे ही छूट गया है तो ये केयरलेसनेस हो गई, आपने वो उतना विचार ही नहीं किया कि आपके कारण यहाँ पर ऐसा हो गया। जैसे कि हम लोगों ने घर में सफाई करी और वहां पर घर में थोड़ी एक जगह चीटियां हो गई थी, हमको लगा यहाँ पर तो किसी के पैर से मर जाएंगे, तो आपने बहुत अच्छे से उनको उठाया चीटियों को, बहुत अच्छे से उनको साफ किया और साफ करके आपने बाहर कहीं धूप पर उनको डाल दिया। अब क्या मतलब हुआ धूप पर वो लोग गए तो फिर थोड़े टाइम पर तो वो जल ही जाएंगे। तो उनको ऐसे स्थान पर रखना, जो कुछ भी हम चीजों को कोई भी जीवों को हम यहाँ से वहां करते हैं तो उनको देखकर कहाँ पर रखें उनको कहाँ पर नहीं रखें। कहीं हमने एक जगह से उठाया चीटी को और हमने ऐसी जगह डाल दिया जहां हमने देखी नहीं, वहां ऑलरेडी पहले पानी पड़ा हुआ था तो वो चीटी तो सीधे पानी में गई तो मर गई। तो ये इतना अलार्म्ड जो जीव करुणा में अहिंसा के पालन में लगा हुआ है उसको एटलीस्ट इतना फॉलो करना चाहिए कि वो चीज कहाँ से उठा रहा है तो उस जगह पे तो चीज नहीं है और वो जहाँ रख रहा है वहां पर तो जीवों के स्थान नहीं है या फिर वहां पर जिनको रख रहा है उनको आरक्षा तो नहीं हो जाएगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना क्या बोलेंगे हमको, इतना कॉशियस हमको, इतना विजिलेंट हमको होना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग बस थोड़ा सा करके चलो हमने इसको यहाँ से जीव को यहाँ से उठाया नहीं तो यहाँ पर रास्ते में हो जाता और हम उसको कहाँ रखा है कि जा दूसरी जगह वापस किसी दूसरे रास्ते में रखा है तो क्या आपने अपने रास्ते से हटाया बट उसकी रक्षा तो नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो धर्म दया वाला है करुणा वाला है इस पर ये वाला पॉइंट हमको समझना चाहिए कि दया सिर्फ इतनी नहीं होती कि आप एक जीव की रक्षा एक जगह से हटा के उसको दूसरे अपने घर से निकाल दो मतलब ये उसकी रक्षा होगी। आप उसको जहाँ पहुंचा रहे हो वो स्थान भी क्या आपने सोचा है, वुड इट बी सेफ फॉर इट, उसके लिए सही रहेगा या नहीं, ये चीज ध्यान में रहने के लिए।
और आपने जो प्लेट्स वगैरह बताए के वैसे कर्व्ड वगैरह हो गए,
हाँ हाँ उसमें जो थोड़ा थोड़ा साफ नहीं होती जिसमें थोड़ा मैल लग जाता है हमको फिर बाद में नाखून से कभी कभी हम यूज करते हैं तो कभी कभी हम उनको अच्छे से साफ करते हैं तब वो वापस चमकती हैं, तो वो वाली प्लेट्स ऐसा चीजें यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमको लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा सा मैल है लेकिन वो एक्चुअली फूड का पार्ट है तो उसमें होंगे ही हमको नहीं दिखेंगे वो बट वो छोटे वाले जीव उनमें रहते ही हैं। फिर खाने की तो किसी भी चीज की मर्यादा 24 घंटे से ज्यादा तो क्या है, घी तेल की ही बस है या फिर जो हम रखते हैं ये सारा अनाज उसके बाकी जो भी खाने की जो भी प्रिपेयर्ड फूड है आपने रोटी बनाई वो भी 24 आवर्स से ज्यादा है क्योंकि सब में वाटर डलता है पानी सब में डलता है पानी डलता है तो पानी 24 आवर्स मैक्सिमम तो 24 आवर्स से ज्यादा तो हर किसी चीज में जीव उत्पन्न होंगे जिसमें पानी है तो
नहीं वैसे ही आपने वो लाइक बताया ना, वैसे मैंने एक सुमित प्रकाश जी के प्रवचन में सुना था कि बहुत साल पहले कि हमारे जो किचन के, इंडिया का तो मुझको नहीं पता परंतु यहाँ कई लोग वो किचन के काउंटर्स वगैरह काले बनाते हैं ब्लैक के, तो
उन्होंने
ब्लैक वगैरह नहीं बनाने चाहिए क्योंकि उसमें चीटिया वगैरह कोई हो एक काले हमको।
मंदिरों में भी हम लोग डार्क मार्बल या डार्क स्टोन्स नहीं लगाते हैं क्योंकि नीचे फ्लोर नहीं दिखता है। घरों का भी मैं फ्लोरिंग लाइट कलर की करनी चाहिए क्योंकि उसमें जीव नहीं दिखती डार्क कलर में। लाल चीटी हुई, यदि हमने रेड स्टोन लगा दिया तो लाल चीटी नहीं दिखती हमको, और ब्लैक में तो काली और लाल दोनों ही नहीं दिखती है। तो लाइट कलर की हमको फ्लोरिंग वगैरह का यूज करना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स का भी वही यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें नहीं तो जीव नहीं दिखते और उनकी फिर मतलब हम जब बहुत पास से जाके दिखते तब हमको पता चला यहाँ तो जीव दिखने सारे। वो हमको हर एक चीज इसलिए वो उन्होंने हम मैंने भी वो क्लासेस अटेंड करी है शायद पंडित साहब की, तो वो बताते हैं कि कैसा हमारा घर का डिजाइन होना चाहिए। मतलब यदि किसी के कोई है आत्मार्थी और उसको जो बेसिक चीजें हैं इसकी करने के लिए तो उसको इतनी चीजें तो होनी चाहिए। घर में ज्यादा फर्नीचर नहीं होना चाहिए नेसेसरी क्योंकि द मोर फर्नीचर यू हैव वो आप उतने ज्यादा जीवों को जन्म लेने के स्थान बना रहे हो। भले आप रोज सफाई करो बट वो तो जन्म जहाँ से भी लेंगे वो उनके लिए घर बनते जाते हैं। सिंपल इसलिए जो लोग बैठते हैं वुड में बैठते हैं, माइका मतलब जो प्लाईज होती हैं आजकल जो टेक्नोलॉजी के कारण इतनी सारी चीजें आ गई हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज नहीं करते हैं क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में मतलब सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। आप एक बार यदि तेल लग जाता है तो फिर उसको कितनी मुश्किल होती है सफाई करने के लिए, बट फिर भी उसका कलर चेंज हो जाता है राइट। तो इनमें मतलब फूड कम्प्लीटली चला जाए ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ उसकी फिर एरोमा रह जाता है कुछ। सो और ये सारी चीजें इसलिए हम स्टील वगैरह के बर्तन यूज करते हैं मेटल के क्योंकि वो साफ हो जाते हैं पूरे अच्छे से, तो उसमें खाना नहीं बचता।
अनुभव जी ये कांच कांच के बर्तन तो एकदम धोने से बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं और हम लोग तो यहाँ वैसे कांच के ज्यादा यूज करते हैं परंतु परंतु इंडिया वाले जो आते वो उन लोग को तो स्टील की थाली ही खाने के लिए वगैरह चाहिए, तो उसमें मुझे लॉजिक नहीं पता कि क्यों उन लोग
कांच के बनने में हिंसा बहुत होती है। मतलब स्टील के बनने में भी हिंसा तो बहुत है बट कांच की फॉर्मेशन जो है वो बहुत मतलब कांच को जैसे बनाया जाता है टाइप तो उसके लिए प्लस प्रेफरेबली मेटल इज द बेस्ट। मतलब जो हम स्टील वगैरह में खाते हैं आप पीतल की थाली होती है अलग अलग तो इनको प्रेफरेबली माना जाता है। तो जो लोग थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं चरणानियों को तो फिर वो लोग बाकी एक्सपेरिमेंट्स में नहीं जाते हैं कांच सिरेमिक करते हैं और बाकी ऐसा कुछ नहीं, साफ तो हो जाता है कांच। मैं एक और बार पूछ के बता दूंगा, आई एम रियली इतना श्योर नहीं हूँ बट इतना पता है कांच की फॉर्मेशन में हिंसा बहुत होती है।
अच्छा ओके, मुझे वो नहीं पता था कि उसमें हिंसा बहुत होती है तो
बाकी स्टील की फॉर्मेशन में भी होती है हिंसा तो वो तो दोनों में क्योंकि सबको हाई लेवल टेम्परेचर पर ही आप मेल्ट करते हो फिर उनको फॉर्म करते हो दोनों में, या कांच में सैंड को बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्न करना पड़ता है तो पिघल कर कांच बनता है लेकिन फिर उसको ठंडा करने के लिए तुरंत पानी में डालना होता है तुरंत कांच को, सो दैट से उसमें हिंसा वैसे इन्वॉल्व बहुत हो जाती है प्लस चीजों की पानी के जल का एक अग्निकाय करके। तो ये वाली चीजें सारी बस एक ये हमने टच किया कि हमारा जो दया है वो अकेली लिमिटेड इतनी नहीं रहे कि हमने यहाँ से रक्षा करी, उसका थॉट थोड़ा आगे तक जाए कि हमने ये किया है इज इट क्या इससे वो और परेशानी में तो नहीं आ गया है राइट। तो बचपन में हम लोग को एक कहानी सुनाई जाती थी, मैंने शायद पहले भी पूछी थी जब समी रिजुल आते थे तब वो जैसे एक बच्चा है और वो मंदिर जाता है रोज तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है कुआं पड़ता है तालाब, सो वो क्या देखता है कि उस तालाब का पानी सूख रहा है और उसमें बहुत सारी मछलियां हैं तो वो क्या करता है, उन सारी मछलियों को, उसको दया आ जाती है कि सब तो सूख जाएंगी, तो वो उन सारी मछलियों को पानी भरती बाल्टी में उनमें डालता है और उन मछलियों को ले जाकर पास वाले कुएं में डाल देता है सारे। ठीक है, अब टर्न आउट कि वो कुआ जो रहता है वो तो तेल का रहता है, तो सारी मछलियां मर जाती हैं। तो अब इसको पुण्य लगेगा मछलियों को बचाने का या मारने की हिंसा का पाप, ये क्वेश्चन है।
उसका अभिप्राय तो बचाने का था तो उसको,
हाँ, लेकिन हिंसा और अहिंसा की कहानी अभिप्राय तक नहीं रुकती है। तो हाँ, वो बच्चा है, वो भोला है, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, बट जितनी जिम्मेदारी बचाने वाले की, जहाँ पर वो असुरक्षित है, जहाँ पर वो सेफ नहीं है, जैसे पानी सूख रहा है, तो जितनी उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो मछलियों को उस जगह से निकाल दे, उतनी ही जिम्मेदारी इसकी ये है कि वो जहाँ उसको ले जा रहा है वहां पर उसकी सिचुएशन अच्छी है बुरी उसको तो पहले देख ले, उनकी साथ वो भी तो उसकी जरूरी है सुरक्षित जगह की। तो उसको अभिप्राय अच्छा है, उसकी भावना अच्छी है, तो जितने उसका संबंध है उसके हिसाब से उसको उतना तो पुण्य लगेगा, बट एट द सेम टाइम उसको प्रमाद का पाप भी लगेगा कि उसने जिस स्थान पर उनको रखा वहां पर चेक भी नहीं किया कि कहाँ पर रख रहा हूँ मैं। अब यदि वो बच्चा है शायद उसको नहीं पता, उसको तेल पानी जैसा लगा हो तो फिर कोई बात नहीं, उसने चेक कर लिया है, उसके बाद भी वो मरते हैं तो फिर कोई बात नहीं, बिकॉज ही थिंक्स कि पानी में डाल जाए, बट विदाउट चेकिंग डायरेक्टली जाके डाल देना दैट वुड बी प्रमाद, तो प्रमाद का फिर पाप हो जाता है। के लिए ये जिम्मेदारी बन जाती है हमारी कि हम जिस भी स्थान को यूज कर रहे हैं हमने क्या उसको एक बार चेक किया है कि हाँ यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। हनुमान समकित को कारण अष्ट अंग जित धारो। तो हमने लॉन्ग टाइम बैक अभी जब हमारी पांच सिक्स क्लासेस अगो हम लोग जब सात तत्व की चर्चा का कंक्लूजन कर रहे थे तब हमने बोला था कि अब हमें पंडित दौलत राम जी एक टेस्ट देंगे जिस टेस्ट को देखकर हम वैलिडेट कर सकते हैं कि आर वी ऑन द राइट पाथ और नॉट, या हमारे अंदर जो हम तत्व ज्ञान का विचार करते हैं उससे बाहर के जीवन में क्या क्या, जैसे कि इफ आई एम ऑन अ गुड डाइट, यदि मेरी डाइट अच्छी है, आई एम हैविंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, फूड हमारा प्रॉपर है, प्रॉपर टाइम पर लेता हूँ, प्रॉपर डाइट लेता हूँ, तो वो पता कैसे पड़ेगा इफ माई डाइट इज प्रॉपर, कि बाहर में आपका डाइजेशन कैसा है, आपकी बॉडी में आपको कितना एनर्जेटिक फील होता है, वो उस हिसाब से आपकी बॉडी में क्या, तो आप अपनी बॉडी को देखकर बता पाओगे कि वेदर एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट। ठीक है, दवाई को आपने खाया तो दवाई वर्क कर रही है नहीं कर रही है कैसे पता पड़ेगा, कि बाहर की बॉडी में जो आपको प्रॉब्लम्स थी यदि वो वापस ठीक हो रही है, देन आपने सही किया, दवाई अच्छे से खा रहे हो आप, राइट। सिमिलरली हम तत्व विचार कर रहे हैं तो क्या वो वर्क कर रहा है, इज इट वर्किंग, हम जो कर रहे हैं क्या उसका कुछ फायदा भी हमको मिल रहा है, उसका टेस्ट अब आगे की सारी जितने भी चंद आएंगे उन पर पंडित जी साहब हमको बताएंगे कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं या सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं या मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तैयार हुए होते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीवों के जीवन में क्या क्या आ जाता है। तो ये सम्यक दृष्टि के तो होता ही है, लेकिन सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के पहले की प्रोसेस में ही आने लगता है, सम्यक दर्शन होने के बाद तो इस पर वैलिडेशन होता है कि हाँ ये इसके पाया जाता है बिकॉज ही है सम्यक दर्शन, बट इनका होना उसके पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये हमारे यदि हम अपने जीवन में देखेंगे हमारे परिणामों में ये वाली चीजें आ रही हैं, देन वी आर समवेयर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है,
हाँ,
तो अभी बहुत जनरल बहुत बेसिक बातें चलेंगी क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन के लक्षण कहे जाएंगे ये सब तो गौण रूप से त्रियंशों के भी होते हैं, नारकियों के भी होते हैं क्योंकि उनके सम्यक दर्शन है, मुख्य रूप से मनुष्यों के कहे जाते हैं क्योंकि उनके पास पूरा माहौल, उनको मंदिर मिल जाता है, त्रियंशों और नारकियों को नहीं मिलता, उनको शास्त्र पढ़ने वाले और सुनाने वाले और सुनने वाले ऐसे तत्व यानी साधर्मी मिल जाते हैं, समाज मिल जाता है, तो मनुष्य गति में इनको प्री डोमिनेंट की ये कंपल्शन है। और लेकिन ये गौण रूप से त्रियंश गति में और नरक गति में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स जब उनके पाए जाते हैं, तो हम जब इतनी तत्व ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो इनका अंश तो हमारे अंदर प्रकट होना ही चाहिए। ठीक है, तो तीन चीजों को बोला, ये संकित के कारण है, सम्यक के कारण है, कौन, जिनेन्द्र देव, निर्ग्रंथ गुरु और अहिंसामय धर्म, इनका सेवन ये सम्यक का कारण है, सम्यक दर्शन का कारण है। और वह सम्यक दर्शन कैसा है कि सम्यक दर्शन आठ अंग वाला है, और उस सम्यक दर्शन को आठ युग अंगों के साथ धारण करो। ठीक है, सात तत्व और ये तीन देव गुरु और धर्म, इन तीनों के कारण सम्यक दर्शन होता है, इनके सेवन से सम्यक्त्व होता है। ऐसे सम्यक्त्व को धारण करो, कहता है वो सम्यक्त्व कि वह अष्ट अंग के द्वारा सेवित किया जाता है, अष्ट अंग के साथ वाला है, अष्ट अंग युक्त है। ठीक है,
हाँ।
तो अब आठ अंग कौन कौन से हैं और सम्यक दर्शन की ओर क्या क्या नहीं होता, उसके लिए अगला छंद है, उसको पढ़ते हैं, ग्यारहवें नंबर का छंद है। वसुमद तारिणी बारी दृष्टता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष विनाशम वेदाधिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष प्रचीसो दिन संक्षेपे कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। ये वाली जो ग्यारहवा छंद है, इसकी जो चौथी लाइन है, ये चौथी लाइन बहुत फेमस है, गुरुदेव श्री भी कई बार इसको लेते हैं और बहुत फेमस, हम सबको याद होगी है, बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जिन दोषों के बारे में या जिन गुणों के बारे में, जिन बुराइयों के बारे में या जिन अच्छाइयों के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो हम उनको छोड़ने की और ग्रहण करने की बात ही कैसे करेंगे। हेलो,
हाँ हाँ बराबर।
बहुत सारी चीजें, जैसे हमको इतना नहीं पता था कि दूध देरी में आता है तो कैसे आता है, बट जैसे जैसे हमको पता पड़ने लगा कि इतनी क्रुएलिटी हो गई है, तो हमको पता पड़ रहा है तो हम धीरे धीरे उसको रेस्ट्रेन कर रहे हैं, राइट। पता ही नहीं होता तो हम कैसे करते हैं।
हाँ बराबर, कि नहीं पता तो फिर उसमें
हमको जब पता ही नहीं है, ऐसे ये होता है तो हम फिर उसमें क्यों उसको ग्रहण करेंगे या उसका त्याग करेंगे। जब, तो इसलिए सबसे एकदम रूल है कि हर चीज को जानना क्यों आवश्यक है। आप अकेली गुण-गुण की बात करो, आप ये क्यों बोलते हो कि सम्यक दृष्टि को ये नहीं होता, आप तो ये बोलो कि ये होता है। तो नहीं, जब तक दोष पता ही नहीं पड़ेंगे कि ये दोष है, तो उनका त्याग कैसे होगा, और जब तक पता ही नहीं पड़ेगा कि इसमें ये क्वालिटी है, ये गुण है, तो उसके ग्रहण करने का आपको परिणाम भी क्यों आएगा। तो बिन जाने ते, बिना जाने उन दोषों को और गुणों को हम कैसे दोषों को तज दें और कैसे गुणों को ग्रहण कर लें, कैसे तजिए रहिए। तो जब हमें पता ही नहीं है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो फिर बिना जाने हम क्या ग्रहण और क्या त्याग की बात करें। ठीक है,
हाँ।
तो अभी सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन है और 8 गुणों का। वसु मद तारी, वसु मतलब 8, वसु द्रव्य समारी, वसु मतलब 8, संस्कृत में 8 को वसु कहते हैं। मद मतलब होता है घमंड, प्राइड, मान, तो 8 प्रकार का मद होता है या 8 प्रकार का घमंड होता है, उसको टारी, उसको छोड़ दो, उसको टाल दो, त्याग कर दो, 8 प्रकार के मद का यानी घमंड का त्याग कर दो। दूसरा निवारी त्रिषठता, और तीन प्रकार की जो मूर्ता है, षट यानी कि मूर्ख, षट यानी कि पागल, एकदम मूर्ख जिसकी बुद्धि पत्थर बन चुकी है, तो ऐसे तीन प्रकार की षटता होती है, पागलपन होता है, मूर्ता होती है। तो तीन प्रकार का पागलपना या मूर्पना या मूर्ता, उसको निवार दो।
षट तो छह, छह को षट बोलेंगे ना,
वो षट होता है, षट ट और षट था, ठाकुर वाला षट, षट मतलब पागल, मतलब मूर्ख, मूर्ख।
अच्छा, यहाँ तो
शट
है ना ये कथा,
यहाँ शट है, था ठाकुर वाला शट नहीं है, वो शट कोण वाला शाह और था वो शट द्रव्य।
जो बुक मेरे सामने खुली उसमें तो शट है और उसमें अर्थ भी छ लिखा है, छ।
ओ अरे वो आप अगला वाला देख रहे हो, शट अनायतन, इसके पहले जो नाम है त्रिश,
ओ त्रिष्ठा, ओके
हाँ, दैट शट। तो त्रि मतलब तीन प्रकार की, शठता मतलब मूर्ता, पागलपन, तीन प्रकार का पागलपन। वसु मदकारी मतलब आठ प्रकार का मन, मद घमंड को तार कर, और निवारी छोड़कर, निवारण करके, किसका, त्रिषठता, तीन प्रकार की षठता का, और छह प्रकार के अनायतन, षट अनायतन, छह प्रकार के अनायतन, उसका त्याग करो, त्यागो। ठीक है, देखो तो आठ मद का त्याग करो, तीन त्रिषटता का त्याग करो और छह अनायतन का त्याग करो, कितना हो गया, आठ, एट प्लस थ्री प्लस सिक्स सेवनटीन हो गए, एट प्लस थ्री इलेवन प्लस सिक्स सेवनटीन। अगला शंका दिक वसु, वसु अगेन आगे, वसु मतलब आठ, तो 17 प्लस 8 25, 17 प्लस 8 25 हो गए। तो जो शंका आदिक आठ दोष हैं, उसके बिना उनको भी नाश करके, उनका भी त्याग करके, संवेगादिक चित्त पागो, तो संवेग आदि जो चार बहुत सुंदर सम्यक दृष्टि के गुण हैं, उनमें अपने चित्त को डुबा दो, उसमें पगा दीजिए, अपने चित्त को उसमें भींगा दीजिए। कौन कौन से संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, और कौन सा है, चार चीजें होती है ना, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चार चीजें सम्यक दृष्टि के विशिष्ट गुण कहे जाते हैं, इनमें हमें अपने मन को लगाना चाहिए। 25 दोषों को हटाकर संवेग आदि में अपना चित्त लगाना चाहिए, और क्या, अष्ट अंग यानी आठ अंग जो सम्यक दर्शन के हैं, अरु दोष 25ों, और ये जो 25 दोष बताए कौन कौन से, आठ मद, तीन मूर्ताएं, छह अनायतन और आठ दोष, तो इनका आठ आठ अंगों को और 25 दोषों को, अब उनको संक्षेप में मैं बोलूंगा, तीन संक्षेप में कहिए, अब मैं बोलता हूँ उनको संक्षेप में, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बिना जाने दोषों को और गुणों को हम कैसे तजें और कैसे गए, जब हमें स्वरूप ही नहीं पता होगा तो इसको छोड़ना चाहिए और इसको ग्रहण करना चाहिए, हमको कैसे पता पड़ेगा, सिंपल। तो ये वाले छंद में सिर्फ 25 दोषों के नाम दिए, नाम मतलब अकेले उनके नंबर्स बताए हैं, आठ मद, तीन मूर्ता, छह अनायतन और आठ दोष, टोटल 25, और संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये चार विशिष्ट गुण, और आठ गुण जो कि निशंक ने कांक्षित आदि है, इन सब का अब मैं दौलतराम आगे जाकर वर्णन करूंगा। क्यों वर्णन करूंगा, क्योंकि बिना दोषों को जाने उनको कैसे त्यागा जा सकेगा, और बिना गुणों को जाने उनको ग्रहण क्यों किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ठीक है,
हाँ
ओके, किसी को कोई क्वेश्चन, यहाँ से कोई डाउट तो नहीं इसमें, नो? तो अभी इन सब के एक्सप्लेनेशन बाहर आएंगे, अगले अगले छंदों में आएंगे कि क्या क्या ये होते हैं, आठ मत क्या होते हैं, बराबर। तो सबसे पहले सम्यक के 8 अंग पंडित दौलत राम जी ने, देखो दोषों के नाम पहले दिए और अंग का नाम बाद में दिया, और अब बोल रहे हैं अंग का नाम इसके पहले वाले छंद में भी दे दिया था। तो आप पहले किसका वर्णन कर रहे हैं, दोष का वर्णन कर रहे हैं कि अंग गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कि पहले वो गुणों को जो ग्रहण करना है उसको बता रहे हैं, फिर जो त्याग करना होगा उसको बताएंगे। ये जैन दर्शन की स्पेशल शैली है। जैन दर्शन में ये पहले बताया जाता है कि आप क्या ग्रहण करो रेदर देन आप क्या छोड़ो।
पॉजिटिव
पॉजिटिव 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य कुंकुन देव ने क्या बोला, हे जीव तू प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। पहले ये नहीं बोला कि तू ये कर वो कर, वहां जा यहाँ जा, ये सब छोड़, मध्यमांस मधु का त्याग कर, 7 व्यसन का त्याग कर, 5 पाप का त्याग कर, 4 कषाय का त्याग कर, ये सब कोई बात नहीं करी वहां पर। गुरुदेव श्री के प्रवचन जो है उनमें गुरुदेव श्री यही बोलते कि देखो क्या बोला, कुछ नहीं बोला, प्रथम में प्रथम करने योग्य तो क्या है, ये है, क्या कर, हे जीव
आत्मा ने ध्यान,
प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, आत्म राजा है उस आत्मा राजा को जानो। राइट, तो यहाँ पर पहले ये बताते हैं कि क्या ग्रहण करना है, यदि वो ग्रहण कर लिया तो जो छोड़ना है वो तो अपने आप छूट जाएगा, करेक्ट, क्योंकि उसको आपने ग्रहण कर लिया तो जो छोड़ना था वो छूट गया, करेक्ट।
हाँ,
तो यहाँ पर पहले 8 अंगों को बता रहे हैं कि आप यदि इनको ग्रहण कर लो तो 25 दोष अपने आप छूट जाएंगे। तो पॉजिटिव पहले सम्यक के 8 अंग और शंका के 8 दोषों के अब लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहले 8 अंगों के, जिन वच में शंका ना धार ब्रश, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन ना देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने, निज गुण अरु पर औगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर भ्रष्टें चिगते, निज पर को सुधरावे, धर्मी सौ गौ वच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दे पावे, इन गुण ते विपरीत दोष बसु, तिन को सतत खे पावे। ये टोटल सम्यक दृष्टि के जो 8 गुण होते हैं उनका वर्णन है। ये 8 गुण ऐसे नहीं समझना कि उनके जैसे सम्यक दर्शन होता है तो ये अंदर में 8 अचानक से प्रकट हो जाते हैं। सम्यक के पहले की भूमिका में ऐसी जीव की परिणति बहुत स्वच्छ हो जाती है कि उसको ये सारी बातें तो अपने आप उसके जीवन में आ ही जाती हैं। ठीक है, तो हम में से अब हमको ये जब हम ये गुण पढ़ेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा हमारे अंदर इसमें से क्या क्या आ चुका है। ठीक है,
हाँ
फाइन, आप लोग सुन रहे हैं राइट आज?
हाँ, दूसरे बोलो प्लीज, है अभी तो
ओके ओके,
बोलो।
हाँ, तो देखिए
हाँ,
अब यहाँ का टॉपिक थोड़ा सा बहुत जनरल होके बहुत हमारे लिए कठिन होगा, क्योंकि हमारे लिए कुछ टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं कि इज इट द केस, क्या ऐसा हमारे साथ है या नहीं है। सबसे पहली चीज, जिन बच्चों में शंका न धार वृष, सबसे
बहुत अच्छा है ये टॉपिक,
सॉरी क्या चीज, बहुत हाँ
बहुत अच्छा है।
हाँ अभी अभी एकदम जेनरिक है, बहुत ही जो हम जिससे हम रिलेट कर पाए। ठीक है
जो करने वाला है वो आ रहा है।
तो सबसे पहले जिन वच मतलब सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र भगवान का जो कहा हुआ वचन है, यानी जिन वाणी या उनकी दिव्य ध्वनि या उनके बताए गए तत्व, इसमें शंका मतलब संदेह ना धार धारण नहीं करना, इसमें जो कुछ भी जिनेंद्र देव ने कहा है उसमें कुछ भी शंका नहीं करना, डाउट नहीं करना कि व्हाट इफ ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हो सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद सच नहीं हो, तो ये वाली शंका नहीं होना, राइट? अब ये वाली शंका हमको होती है कि नहीं होती, ये वाली बात सोचने वाली है, राइट? काल द्रव्य जैसी चीज है कि नहीं है? धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि दिखते नहीं। साइंस भी टाइम को मानता है, बट टाइम को द्रव्य जैसे नहीं मानता। टाइम को एक फिनोमिना मानता है कि हर एक चीज चेंज हो रही है, तो वो टाइम है। टाइम कोई अलग से सब्सटेंस है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो समय, काल, द्रव्य, ये कोई द्रव्य है? या फिर क्रमबद्ध पर्याय सच में कुछ होती है, जो आचार्य देव बोलते हैं कि जो जिस समय जैसा जहां जिसके साथ होना है वैसा उस समय वैसा वहां होनी निमित्त उसके साथ होगा, क्या ये सचमुच होता है या कहने की बातें हैं? या फिर तीन लोक है, सच में ऊपर स्वर्ग है, सच में नीचे नरक है, या सच में ये संभव है कि हम मरकर तिरेंच बन जाते हो, या सच में ऐसा होता है कि मनुष्य बनकर मनुष्य नहीं बनता, वो तिरेंच देव नारकी बन सकता है, क्या सिद्ध दशा सच में पॉसिबल है? कितने सारे क्वेश्चन है। अब हमको इसमें से किस वचन में डाउट है वो हमको समझना पड़ेगा।
सर्वज्ञ देव में श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसे हो सकते हैं सर्वज्ञ देव, तो फिर उसका ज्ञान कैसा है, तो फिर हमारी शंका नहीं रहेगी।
बराबर। तो पहले तो सर्वज्ञ होते कि नहीं होते, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि क्या इज इट पॉसिबल कि कोई आदमी सब कुछ जानता हो? ही इज ह्यूमन बीइंग, वो एक मनुष्य गति का जीव है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हर एक चीज को जानता हो? और हर एक चीज को जानता होगा तो कैसे जानता होगा? आप समझो सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है, जो तीन काल तीन लोक की सारी बातों को एक साथ एक समय में जानते हैं, बराबर। तो लाइक सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, वो सर्वज्ञ सिर्फ आपको ही जान रहे हैं। मान लें कि पूरे तीन लोक में सिर्फ एक आप ही द्रव्य हो, हम सब मतलब आपके लिए आप अपने को सोचना, मेरे लिए मैं एक द्रव्य हूँ, ठीक है? तो सर्वज्ञ द्रव्य सर्वज्ञ देव सिर्फ मुझे जान रहे हैं, लाइक से मान लिया, बट मुझे कैसा जान रहे हैं कि देखो मैं जब छोटा था तब मैं ऐसा दिखता था, अब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ तो ऐसा दिख रहा हूँ, और जो फ्यूचर में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसा दिखूंगा। ये तो सिर्फ मनुष्य गति की बात हुई। तो मनुष्य गति में लेट्स से इफ आई लिव फॉर 60-70 इयर्स, उसमें जितने समय हुए उतने समय में हर समय में ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, ये शरीर ऐसा 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 दिखता है। अब सर्वज्ञ देव को एक साथ अनुभव को ही देखना है, पूरे 70 साल के अनुभव को एक समय में, तो अब मैं उनको एक दिखूंगा कि उतने अलग अलग टाइप का दिखूंगा, एक समय में कैसा दिखूंगा? और ये तो अकेली अनुभव की बात हुई, जो पूर्व भव में मैं था, जो भविष्य में अनंत भवों में या सिद्धत्व में रहूंगा, उसकी पर्यायों को वो एक साथ एक समय में कैसा देखते होंगे? उनको एक अनुभव दिखता है कि जितने काल के समय है उतने अनुभव दिखते हैं?
इतने काल के समय जितने काल है इतने सारे दिखते हैं।
तो ये तो अकेली अनुभव की बात हुई। फिर अनुभव जैसे अक्षय अनंत जीव है, उन सब को भी उनके सारे समयों के साथ वो दिखते हैं?
स्पष्ट सारा।
तो पॉसिबल कैसे पॉसिबल है ये इतना कुछ?
हम वैसे अनुमान हम न्याय से सिद्ध कर सकते हैं कि हमें अगर
न्याय से तो बहुत कुछ प्रूफ हो सकता है, बट क्या ये वाला डाइजेस्ट होती है बात हमको कि हाँ ऐसा भी कुछ पॉसिबल है? इज इट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? अच्छा सर्वज्ञता के बारे में सोचिए ना, सर्वज्ञ को मैं कैसा दिख रहा हूँ? मैं अपने प्रेजेंट जैसा दिख रहा हूँ कि पास्ट जैसा दिख रहा हूँ कि फ्यूचर जैसा दिख रहा हूँ, कि मैं जैसा भी जब जब जहां जहां था वैसा वैसा उसी समय में दिख रहा हूँ, ठीक है? फाइन
करेक्ट
दिख रहा हूँ ना वैसा का वैसा। अब देखना, आप सोचिएगा, आप थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करिए, ठीक है। तो मतलब अनुभव की बात बस लेते हैं कि अनुभव सर्वज्ञ देव को उसके अनादि अनंत काल पर एक एक पर्याय में जैसा जैसा था वैसा वैसा इसी टाइम पर दिख रहा है, ठीक है, राइट। तो मतलब वो अनुभव फिर वैसा का वैसा दिख रहा है, तो वो उन पर्यायों में वैसा वैसा फ्रीज अनुभव दिख रहा है, स्टैच्यू बना हुआ, कि वो फ्लोइंग अनुभव दिख रहा है जो काम कर रहा है अलग अलग पर्यायों में। मतलब यदि मेरे आप टुकड़े करोगे एक एक पर्याय के, तो मेरी एक एक इमेज बनेगी ना, जैसे वीडियो फिल्म होती है, राइट। जैसे पुराने जमाने में जो वीडियो फिल्म होती थी, तो एक्चुअली तो फिल्म वो पिक्चर्स होती थी, और फिर उनको बहुत तेज आप घुमाते थे तो वो मूवी बनती थी,
बराबर।
जब आपको पूरी फिल्म एक साथ देखनी, तो आप उस पूरी फिल्म को एक साथ स्प्रेड करो, तो आपको स्टिल इमेजेस दिखती है, चलती हुई इमेजेस नहीं दिखती है। आप उस कैमरे की रील को निकालो और उसको स्प्रेड करो, तो उसमें इमेजेस चल रही है कि रुकी हुई है,
रुकी हुई है,
रुकी हुई है। तो क्या सर्वज्ञ देव ऐसा एक एक स्टिल देखते अनुभव का, एक एक पिक्चर देखते अनुभव की, एक एक पर्याय की, कि उनके में भी अनुभव जैसा भी बता रहा है, बात कर रहा है, वैसा मूवमेंट वाला दिखता है। ही इज इनएनिमेट और एनिमेटेड अनुभव, वो चल रहा है कि रुका हुआ है अपने अपने समय में, सोचना पड़ेगा ना। कैसे होती होगी वो पिक्चर उनकी, कैसा केवल ज्ञान की स्क्रीन में दिखता, कैसा ये दुनिया जी, एक साथ तीन काल को एक साथ एक देखना, तो एक जीव के तो अनंत अनंत प्रकार हो गए तीन काल में, हर एक समय में जीव अलग है, अभी निगोदिया है, फिर दूसरा जन एक श्वास में तो 18 बार उसके नए निगोद शरीर हो जाएंगे, तो 18 बार की पिक्चर ही अलग है, उसकी शरीर ही अलग है, फिर क्षुद्र भवों में अलग शरीर, फिर विकलेन्द्रियों में अलग शरीर, फिर संगी संगी पंचेन्द्रियों में चार गति के शरीर, तो एक ही जीव के इतने प्रकार हैं, वो एक साथ उसके सारे प्रकार को एक समय में देख रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे देखते होंगे, उनकी मूवी चलती कैसे होगी, स्क्रीन में कितने टैब्स हैं, कितनी विंडोज ओपन है,
और ये एक ही जीव नहीं, अनंत जीव, और
तो एक जीव का हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहां जीव बात नहीं, वहां तो पुद्गल के परमाणु जो जीव से अनंत अनंत है, वो एक एक परमाणु, फिर धर्म अधर्म आकाश और अनंत असंख्यात कालाणु,
उसके गुण और उसके पर्याय, हार्ड टू इमेजिन कि कितना।
श्रीमद राजचंद जी ने लिखा इसलिए कि सर्वज्ञता का स्वरूप ऐसा है कि यदि विचार करने बैठे तो रोंगटे खड़े हो जाएं, समझ नहीं पड़े कि सर्वज्ञ जानते क्या क्या है, कैसे जानते हैं, क्या होता होगा,
और निर्विकल्प, हमको तो ऐसा लगता है कि ओवरवेलमिंग नहीं हो जाता है।
लोक का लोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान, सकल गेय ज्ञायत तदपि निजानंद रसलीन। अब लेकिन ये सकल गेय ज्ञायत कैसे है, ये तो समझाओ मुझे कि वो जानते ही कैसे हैं सब कुछ, तो ये जो पहला अंग है नहीं संकेत अंग, ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है जिनागम में, या श्रीमद राजचंद जी का वाक्य है कि यदि तत्व में या मार्ग में शंका हो तो द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना, उनका बहुत सुंदर वाक्य है, मुझे पूरा यदि मुझे मिलता है तो मैं सुनाता हूँ, कल परसों पढ़ा था। जब कहाँ पर शंका हो,
मार्ग में,
मार्ग में जब आपको तत्व में शंका हो जाए तो द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना, द्रव्यानुयोग के अभ्यास से सर्वज्ञ में किसी वस्तु व्यवस्था का वहां वर्णन है, उसकी सिद्धि है, तो मुझे मिलता है तो मैं बताता हूँ। हाँ, यदि मन शंकाशील हो गया हो तो द्रव्यानियोग का विचारना योग्य है, प्रमादी हो गया हो तो चरणानियोग का, चरण करणानियोग का विचारना योग्य है, ये प्रमादी हो गया हो तो चरणानियोग को समझो और करणानियोग से उसका कनेक्शन समझो, कि ऐसी क्रिया और ऐसे परिणाम से ऐसे कर्मों का बंध और ऐसे उदय आते हैं, तो चरणानियोग क्रिया और परिणाम बताएगा और कर्णानियोग उसका कर्म के अंदर उसका फल बताएगा। और इससे आपको पता पड़ेगा कि प्रमाद करना कितना भयंकर है, उसके आउटकम कितने डिजास्ट्रस हो सकते हैं। तो यदि प्रमादी हो गया हो तो चरण कर्णानियोग का विचारना योग्य है कि वापस सावधान हो जाओ, हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, नहीं नहीं हम उनको ऐसे नहीं बहने दे सकते। कषायी हो गया हो, यदि परिणाम परिणति कषायी हो गई हो तो धर्म कथानुयोग का विचारना योग्य है कि देखो ऐसे महा महापुरुष तीर्थंकरों जैसे हुए, लेकिन उनके भी पूर्व भवों में जिन्होंने कषायी के परिणाम किए क्या फल निकला उनका, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए उनके कषायी का फल क्या निकला। और यदि जड़ हो गया हो, यानी कि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया हो, तो गणितानुयोग का यानी कर्णानुयोग में जो लोक अलोक का विभाग है उसका विचार करना योग्य है।
दोबारा रिपीट करेंगे वो लास्ट में,
कैसा
हो गया,
जड़
हो गया।
यदि मन शंकाशील हो गया हो तो द्रव्यानुयोग का विचार करना योग्य
है। बराबर।
आदि हो गया हो तो चरण कर्णानुयोग यानी चरणानुयोग कर्णानुयोग का विचार करना योग्य है। यदि कषायी हो गया हो तो धर्म कथानुयोग यानी प्रथमानुयोग का विचार करना योग्य है। और यदि जड़ हो गया हो, जड़ मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धि नहीं चलती, उपयोग स्थूल हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता, जड़ हो गया हो तो गणितानुयोग का विचार करना योग्य है। तो अभी यदि शंका आती है निशंकित में, तो इसमें जो सबसे उपयोगी अनियोग है वो है द्रव्यानियोग। अब द्रव्यानियोग की जो सर्वज्ञ की प्रबल युक्ति पंडित टोडरमल जी ने अलग अलग जगह दी है और आचार्य समंत भद्र ने देवागम स्तोत्र में बताया है कि क्या दोषावरण योर हाने निशेषास्त्र की शायनाथ क्वचिद्यता स्व हेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षया, एक ही है बताई उन्होंने वीतरागता की सिद्धि। और सर्वज्ञता की सिद्धि बताई सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाकर्ष चिद्यथा अनुमेय स्तुग्नादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, कि ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, आंतरिक पदार्थ हैं और दूरवर्ती पदार्थ हैं। सूक्ष्म मतलब परमाणु, हमको परमाणु दिखते हैं क्या?
नहीं
नहीं दिखते। कर्म दिखता है क्या हमको? नहीं दिखता। नहीं। ये सब हुए सूक्ष्म। अच्छा, राम दिखते हैं आपको, लक्ष्मण दिखते हैं, सीता जी दिखती हैं? नहीं दिखते। महावीर भगवान दिखते हैं? नहीं दिखते। ये सब हमारे काल में नहीं हुए, ये हमसे पहले हो गए या बाद में होंगे। तो ये अंतरित पदार्थ हैं, मतलब ये हमारे काल में ही नहीं हुए तो हम इनको कैसे देखें। तो एक तो सूक्ष्म जो दिखते नहीं है जैसे परमाणु और कर्म, एक अंतरित जो थे मनुष्य थे लेकिन हमारे काल में नहीं है तो हम कैसे वेरीफाई करें कि राम हुए कि नहीं हुए, पांडव हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए। वी डोंट नो, वी हैव नो प्रूफ। आप पुराने पुराने खंडर बता सकते हो कि द्वारका है, ये अयोध्या है, लेकिन हम माने कैसे कि पक्का यहाँ पर हुए थे, कोई फिक्शन नहीं है, राइट? और दूसरा दूरवर्ती, जैसे कि मेरू पर्वत है कि नहीं है, अष्टानिका है, नंदीश्वर द्वीप है कि नहीं है, कैसे पता पड़ेगा? वो तो बहुत दूर है, हम तो जा नहीं सकते अभी वहां पर। तो उनका निर्णय कैसे करें? ये वाले पदार्थ, तीन प्रकार के पदार्थ हुए, कौन कौन से?
सूक्ष्म,
अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब जो हमारे टाइम पर नहीं हुए, डिफरेंट टाइम पीरियड के पदार्थ, जैसे कि राम कृष्ण, ये डिफरेंट टाइम पीरियड के हो गए। सूक्ष्म मतलब हमारे ही टाइम पर है लेकिन हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उनको देख पाए, इंद्रियां इतनी हमारी स्वस्थ नहीं है कि हम उनको देख पाए, तो वो सूक्ष्म हो गए, तो हमारे लिए तो नहीं होने जैसे हैं, इसलिए दुनिया नहीं मानती कर्म को, क्योंकि कर्म दिखते ही नहीं है। परमाणुओं को भी कहाँ मानते, हम तो एटम को मानते हैं जो बहुत बड़ा परमाणु है, बहुत सारे परमाणुओं का पिंड है, राइट? तो सूक्ष्म हो गया, आंतरिक हो गया, और तीसरा दूरवर्ती। नंदीश्वर कहाँ है? नंदीश्वर द्वीप तो छोड़ो, वो तो कहीं और का है, वो तो आठवां द्वीप है। आप तो ये बताओ इसी द्वीप में मेरू पर्वत कहाँ पर है? सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, 1,00,000 योजन, मतलब कैन यू इमेजिन, जितना हमारा जम्बू द्वीप का डायमीटर 1 लाख योजन उतना ही लंबा तो सुमेरु पर्वत है, तो कितना बड़ा होगा, ह्यूज, वो तो दिख जाना चाहिए हमको यहाँ से, नहीं दिखता वो, दूरवर्ती क्योंकि बहुत दूर है वो, राइट। हम लोग तो एकदम मतलब वो तो विदेश क्षेत्र के सेंटर में पड़ेगा, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं भरत क्षेत्र में सबसे नीचे कोने में, भरत क्षेत्र के भी किसी आर्यखंड में एकदम कोने में, लवण समुद्र के एकदम पास, राइट। तो ये हम मेरु पर्वत को नहीं देख पाते, तो इन सब की ये सारे पदार्थ जिनका वर्णन इस जगत में मिलता है, किस किस का, सूक्ष्म पदार्थों का, आंतरिक पदार्थों का और दूरवर्ती पदार्थों का, लेकिन इनका प्रूफ तो कोई मिलता नहीं। सूक्ष्म को हम देख नहीं पाते, हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं है कि सूक्ष्म कर्मों को देख लें, हमारे पास ऐसा टाइम मशीन नहीं है कि हम पीछे जाके वैलिड कर लें कि कृष्ण जी थे कि नहीं थे, और हमारे पास ऐसे स्पेसशिप्स नहीं है कि हम जाके नंदीश्वर द्वीप हो आए, मेरु पर्वत हो आए, तो हमारे पास तीनों को वेरीफाई करने की कोई चीज नहीं है, लेकिन इन तीनों की एग्जिस्टेंस तो युक्ति से लगती है कि देखो सूक्ष्म नहीं होगा तो स्थूल चीजें कैसे बनेंगी, तो पार्टिकल तो इतना सूक्ष्म होना चाहिए, करेक्ट। सिमिलरली राम और लक्ष्मण नहीं थे तो लेकिन कोई तो पुरुष रहे होंगे पूर्व काल में, चलो राम लक्ष्मण को जाने दो, आपके दादा के दादा थे कि नहीं थे, योर ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज देयर और नॉट, नहीं होते तो आप कैसे होते यहाँ पर, बट वॉट इज द प्रूफ यू हैव दैट ही वॉज, डू यू नो इफ यू डोंट इवन हैव अ पिक्चर, हाउ डू यू नो, तो कोई तो था लेकिन हम नहीं जानते, हम तो युक्ति से ही जानते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, राइट। हमारे पापा है तो उनके पापा होंगे, तो उनके पापा होंगे, तो उनके पापा होंगे, तो उनके पापा होंगे, ऐसे ही तो होगा, तो कोई तो था पहले, तो आंतरित लोग भी थे और दूरवर्ती, तो जैसे अभी हमारे लिए इतनी सारी चीजें दूर दूर हैं और हम हर एक चीज को नहीं जान पा रहे, ऐसे ही और भी तो चीजें होंगी जहां तक हमारे टेलीस्कोप नहीं पहुंच पा रहे, तो पॉसिबिलिटी तो है कि वहां भी चीजें एग्जिस्ट करें। तो इन तीन प्रकार के पदार्थों की यदि सिद्धि होनी है तो नियम ये है कि उनका किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होना जरूरी है, नहीं तो अनुमान भी नहीं हो सकता। कैसे, जैसे पहाड़ के ऊपर आपने धुआं देखा तो आपको क्या पता पड़ा
कि वहां आग होनी चाहिए,
कैसे पता, आपने आग तो देखी नहीं,
धुएं से अनुमान।
हाँ तो धुएं का अनुमान कैसे हुआ ये,
क्योंकि हम यहाँ हमारे घरों में जब भी धुआं देखते हैं तो हमको तो पता,
आपने इसको प्रत्यक्ष देखा था कि अनुमान से देखा था, कि आपने प्रत्यक्ष देखा था कि आपके घर में या कहीं भी आपने जब जब धुआं देखा प्रत्यक्ष वहां वहां पर आग थी और थी, तो चूंकि आपने यहाँ प्रत्यक्ष देखा है तो आप अनुमान कर पाए पहाड़ पर। तो जो कुछ भी अनुमान किया जाता है वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होता है, ये रूल हुआ कि नहीं हुआ, राइट। जो कुछ भी अनुमान किया जाता है वो तभी किया जाता है जब किसी का वो प्रत्यक्ष हो गया हो, जैसे आप आग का अनुमान कर रहे हो तो रूल ये हुआ कि आग किसी के प्रत्यक्ष होनी चाहिए। सिमिलरली यदि ये तीन द्रव्य अनुमान के विषय हैं, सूक्ष्म पदार्थ अनुमान का विषय होता है, आंतरिक अनुमान का विषय होता है और दूरवर्ती पदार्थ अनुमान के विषय है कि हाँ ये शायद होगा, तो पक्का होता है कि ये किसी ना किसी के जरूर प्रत्यक्ष होंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने इनको जरूर देखा होगा, हमारे लिए वही सर्वज्ञ है। लॉजिक समझ में आया, इसे तो समन्वय भद्राचार्य ने आत्मी मानता यानी देवागम स्तोत्र में दिया हुआ है, उसका पांचवा छंद है, पांचवा या चौथा, पांचवा, सूक्ष्मांतरे दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यथा, सूक्ष्मांतरे तो दूरवर्ती पदार्थ किसी ना किसी के तो प्रत्यक्ष होंगे, सूक्ष्मांतरे दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यथा अनुमेयत्वतोऽग्न्यादि रीति सर्वज्ञ संस्तुति, जैसे अग्नि और धुएं से अनुमान होता है तो वह किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही इन तीन वस्तुओं का अनुमान होता है इसलिए किसी ना किसी के तो प्रत्यक्ष हुए होंगे, यही सर्वज्ञ की संस्थिति है, यही सर्वज्ञ की है। बराबर, इसको बोलते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, कॉमन सर्वज्ञ सिद्धि। और इसके बाद जो उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि बोली वो उनकी विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, उसमें उन्होंने ये पहले वाले अंग की बात करी, जिन वच में शंका नगार। क्या बोले वह समन भद्राचार्य देव, सात्वमी वाही निर्दोषो, हे भगवान वह सर्वज्ञ आप ही हो, वह निर्दोष आप ही हो। मतलब अभी तो क्या बोल रहे थे कि कोई ना कोई सर्वज्ञ होगा, जरूर होगा, अब कौन होगा कि हे भगवान सात्वमी वाही निर्दोष हो, आप ही वो निर्दोष हो। कैसे पता पड़ा, कि युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, कि आपने जो कुछ भी कहा है वह युक्ति शास्त्र और प्रत्यक्ष से विरोध को प्राप्त नहीं होता। इससे पता पड़ता है कि आपने सब कुछ देखा होगा, इसलिए आपकी बात में विरोधाभास नहीं है। मतलब आप सर्वज्ञ और मुझे इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। सा त्वमेव असि, आप ही सर्वज्ञ हो भगवान, और कोई नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है, और जो कुछ भी आपने बोला है वह प्रसिद्ध, प्रसिद्धेन न बाध्यते, प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है जिनेंद्र देव के वचन में शंका नहीं होना। ठीक है, तो आज की आखिरी बात में एक चीज विचार करने की आपको देता हूँ। जिनेंद्र देव के वचन में शंका नहीं होने का मतलब है चार गतियां हैं, और मरण है, और जन्म है, तीन चीजें। चार गतियां हैं क्योंकि जिनेंद्र देव ने बताई हैं, दूसरी बात मरण होता है क्योंकि प्रत्यक्ष दुनिया में दिख ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि मरण के बाद जन्म भी होता है। बराबर, यदि हमको जिनेंद्र देव के वचनों में सच में निशंकता है, देन हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि मरण पक्का है, और पक्का है तो नेक्स्ट बर्थ में जिनेंद्र देव ने बोला है कि जन्म में डाउट नहीं है, जिसका मरण होता है उसका जन्म होता है, और वो जन्म की प्रोबेबिलिटी चार है। हम त्रियंश भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, नारकी भी बन सकते हैं। क्या हमने आने वाले भवों का विचार किया है? यदि हमें जिनेंद्र देव के वचन में शंका नहीं है तो अभी तक हमने कर लिया होगा, और नहीं किया है विचार मतलब हमें जिनेंद्र देव की इस बात पर पूरा डाउट है कि चार गति होती है और मरने के बाद शायद हम कहीं और निकल जाए। राइट,
आप दोबारा दोबारा बोलेंगे?
मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है?
नहीं नहीं, हाँ मैं
ये जिनेंद्र भगवान ने बोला है, वेरी वेरी एकदम फॉर श्योर चार गतियां हैं। देखो पहले तो दो चीजें मत अलग अलग मिक्स करिएगा। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि परीक्षावान बनो, आप हर एक चीज को क्वेश्चन करो, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप डाउट मत करो, शंका मत करो, जैसा बोला जा रहा है सब ठीक है। बराबर, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है। पहले पूरी परीक्षा करके सारे देवों का निर्णय कर लो, जिनेंद्र देव की भी परीक्षा करो, बट एक बार जब वो परीक्षा में सफल हो गए हैं, इफ दे वैलिडेट टू योर लॉजिक हो जाता है जब वो, उसके बाद अब डाउट मत करो, बार बार डाउट्स मत करो। आप बार बार डाउट्स करोगे तो आप कभी डिसीजन, आप कभी श्रद्धा नहीं ला पाओगे। ये श्रद्धा की बात चल रही है। देखो हम घर, हम परिवार में भी यही करते हैं, हम पहले शादी के पहले दोनों परिवार अच्छे से पूछ परख कर लेते हैं कि इनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर इनका कैसा है, इनका नाम ठीक है कि नहीं, सब कुछ हम करते नहीं करते अरेंज मैरिजेस में?
हाँ,
एक बार जब हम लॉक इन करते हैं फिर हम डाउट नहीं करते, फिर अब जो हो गया तो हो गया, अब तो आप हमारी फैमिली हो। सिमिलरली परीक्षा करने वाली बात जो टोडरमल जी कहते हैं, वो तब जब आप सारे धर्मों को आपने सामने बिछा कर रखा और अब आप पहले सबको परख लो, सबको क्वेश्चन कर लो, बट वंस व्हेन यू हैव कंक्लूडेड कि यार मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट जो वर्तमान में प्रत्यक्ष साधित नहीं होता है, जैन धर्म है, तो एक बार जब आपने कंक्लूड कर लिया, अब डाउट मत करो, अब इसको लॉक कर दो, अब जो होगा मैं मान लूंगा। कितनी बार लॉजिक के बार बार हम क्यों उस लूप में जाएंगे कि नहीं नहीं फिर से डाउट, फिर से उसको रिजोल्व, फिर से डाउट, तो आप कभी उसमें श्रद्धा अपनी भावनाओं को नहीं भा पाओगे। तो यहाँ पर वो सेकेंड स्टेज है, जिसने निर्णय किया है वो सम्यक दृष्टि, एक बार निर्णय कर लेने के बाद अब अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, शंका को नहीं धारण करता। ठीक है, सो नाउ आई गिव जस्ट थ्री क्वेश्चन। चार गति है ये सर्वज्ञ ने बोला, और हमने लॉजिक से देख लिया कि पक्का होती है चार गति। मरण सामने प्रत्यक्ष, सब मरते दिख रहे आजू बाजू वाले, तो मरण होगा, बूढ़े हम हो ही रहे धीरे धीरे, राइट। और शिनेन्द्र बोला कि मरण पर कहानी नहीं रुकती, जन्म भी होता है। यदि इन तीनों बातों पर हमको शंका नहीं है तो हमारी लाइफस्टाइल में बहुत डिजास्ट्रस चेंजेस आने चाहिए, जो आ चुके होंगे, बट हमें ये एक आपके लिए थॉट है सोचने के लिए कि डू यू रियली बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। क्या आपको सच में लगता है कि हम मरण होने के बाद ये पॉसिबिलिटी कि हम प्रिंच बन जाएंगे, क्या इस पॉसिबिलिटी कि हम नारकी भी बन सकते हैं, ये हमको विचार करना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये हमारे लिए थॉट सोचने के लिए है, आप ओवर द वीक सोचिए, विचार करिए, क्योंकि अगले भव में मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक, शान हम कहाँ से आ गए हैं और अब आगे का रास्ता क्या। यदि हमें जिन वचन में प्रीति है और विश्वास है, तो हमें आत्मार्थी को अपने एक एक परिणाम का हिसाब होना चाहिए। जैसे कि कुशल धंधे वाला एक एक पाई का हिसाब रखता है, उसको सारे अकाउंट्स एकदम मास्टर्ड होते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, कहाँ पर है, कहाँ का कैसा पड़ा हुआ है। सिमिलरली एक एक परिणाम से हमारे भविष्य का लेना देना है। सो आर बी कॉशियस इनफ, आर बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, ये करिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में नए कांक्षित अंग को देखें और नए शंकित पर थोड़ा डिस्कशन करके, और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हमारे कुछ और अंग हो जाएंगे। बहुत सिंपली हमारी लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव करने वाली आठ अंग हैं, तो हम इन पर थोड़ा, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप प्लीज पूछेगा। ठीक है, चलिए अभी टाइम अपना बहुत हो गया। ओके, अर्जुन माइनस सुखिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शतपार, उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शतपार। नौ बाय नमकार,
थैंक यू अनुभव जी, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र,
जय जिनेन्द्र, थैंक यू
अनुभव जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेन,
जय जिनेन्द्र,
जय जिनेन्द्र,
जिनेन्द्र।
Thank you.
अप्रिशिएट।